ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/culturedays ਤੇ ਜਾਓ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ।
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747471।
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com, ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900।
ਚਾਂਦਨੀ
ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ,
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚੋਇਸ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, sound system innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye, 437-218-8734, chandnihalls.ca. Chandni.
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 AM ڈائل پر پروگرام ساز و آواز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں شازیہ ملک صاحبہ، اور کھٹی میٹھی خبریں لے کر آپ کے لیے حاضر خدمت ہے جناب. ہمارا یہ نیوز کا سیگمنٹ جو ہے وہ اسپانسر کیا ہے لیمفائی کی طرف سے، LEMFI. یہ لیمفائی ایک موبائل ایپ ہے، اسے آپ اپنے اینڈرائڈ اور اپنے ایپل فون میں یعنی iOS آپریٹنگ یعنی جو ایپل یوز کرتے ہیں، جو دوسرے اینڈرائڈ فون یوز کرتے ہیں، آپ اسے آسانی سے LEMFI اپنے ایپ سٹور میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ فری ایپ ہے، جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو یہ آپ سے آپ کا ای میل ایڈریس یا پاس ورڈ کے تھرو آپ اس میں اکاؤنٹ سائن اپ کر لیں، اور سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے پرومو کوڈ eawaz10 جو ہے وہ یوز کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر جب آپ کا سائن اپ ہو جائے گا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کریڈٹ کارڈ، کوئی آپ نے اپنی بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز نہیں دیتی. جب آپ کی ساری ویریفیکیشن ہو جائے گی، یعنی آپ نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس دے کے ویریفائی کرا لینا ہے، جب آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا تو آپ نے سمپل آپ کو لیمفائی ای میل کر دے گا کہ آپ نے اس ای میل پر یعنی لیمفائی کی ای میل پر ای ٹرانسفر کرنے، یعنی آپ نے جتنے بھی پیسے بھیجنے ہو وہ آپ ان کو ای ٹرانسفر کر دیں، تو آپ کی ایپ میں ود ان سیکنڈز آپ کو نظر آ جائیں گے. جیسے آپ نے $200 ای ٹرانسفر کیے لیمفائی کو، تو وہ آپ کے والٹ میں یعنی جو ایپ کے والٹ میں ہے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جسے بھی بھیجنا ہے تو سینڈ منی میں جا کے آپ سینڈ منی دبائیں گے، جتنے بھی پیسے آپ نے بھیجنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اپنے بینیفیشری یعنی جس کو بھیجوانا ہے ان کا بینک اکاؤنٹ نمبر، IBN نمبر ایزی ہو جاتا ہے اگر خدا نہ IBN نمبر انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے، وائر ٹرانسفر کے لیے، یعنی جو پراپر طریقے سے اگر آپ نے بینک ٹرانسفر کرنا ہے منی تو وہ IBN نمبر از ویری امپورٹنٹ. آپ بہت آسانی سے آپ کسی کو بھی وہاں کہہ سکتے ہیں جی آپ کا جس بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے ان کا نام، بینک کا نام اور IBN نمبر لے لیں اور وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے، تو بآسانی آپ ود ان 5 منٹس پیسے آپ کو وہاں پہنچ جائیں گے. اور ان کے ریٹس، ایکسچینج ریٹ بہت اچھے ہیں اور ان کا جو ٹرانسفر فیس ہے وہ بالکل ہی زیرو ہے. تو آپ آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے لیمفائی LEMFI. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے یہ میں نے جو ایکسپلین کیا آپ کو سمجھ آ جائے گا. اگر نہیں بھی آیا تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر اس کو ایکسپلین کرتے رہیں گے اور آپ کی کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ لیمفائی آسانی سے آپ اپنے پیاروں کو پاکستان بھیج سکیں بائی یوزنگ لیمفائی. چلیں جناب خبروں کے لیے شازیہ ملک صاحبہ کو شامل کر لیتے ہیں. ایک بار پھر شازیہ ملک کو کہتے ہیں خوش آمدید एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS कैसे हो?
WS अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की गर्मा गर्म खबरें जो हैं
वो काफी गर्म है।
अच्छा, आज गर्म है कि खट्टी है कि मीठी है, क्या है?
गर्म है, गर्म है, काफी गर्म है, क्योंकि गर्म हवाएं चल रही है ना, और वो गर्मी के इलाके में, गर्मी के इलाके में गर्म हवाएं चल रही है ना, गल्फ में गर्म हवाएं चल रही है,
गर्म
तो वो गर्म इलाका है ना, तो गर्म इलाके में गर्म हवाएं चल रही हैं।
तो आज कितने पेजर फट गए?
आज दूसरी बहुत चीजें फट रही हैं।
अच्छा, और दूसरी चीजें फट गई हैं।
और आप देखें जरा इनका हार्टलेसनेस देखें, एसोसिएटेड प्रेस के जो वहां पे इसराइल के अंदर वो जो उनकी ये वॉर जोन और सारा जो कवर कर रहे हैं, कह रहे हैं ये इतने हार्टलेस हैं, इन्होंने वहां पे जो अटैक्स किए हैं पैलेस्टीनियंस के ऊपर, आप सोचें कि उनमें कुछ जो मकान थे उनमें वो जो इन्होंने पैलेस्टीनियंस मारे उनको ठुड्डे मार मार के जो छत से नीचे बॉडीज उनकी फेंकी। ये देखो जरा, ये हुरमत है मरे हुए बंदे की, आप देखिए जरा, बच्चे तो मार ही दिए, पूरी नस्ल तो खैर उनकी पैलेस्टीनियंस की खत्म कर ही दी है इन्होंने, लेकिन एक नस्ल तो एटलीस्ट पूरी खत्म कर दी है, और जो बाकी के बेचारे रह गए हैं चार लोग उनको भी वो मारने के चक्कर में, और मुसलमान सो रहे हैं अपना ट्रेड दबा दब बेचारे। मैं तो आपको रोज सुना रही हूँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट यूएई में हो रही है, हाँ वो 6,800 मिलियनेयर वहां पे जा रहा है, फिर जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सऊदी में हो रही है, कतर में हो रही है, कतर भी बस वो बैठा हुआ है नेगोशिएशन में, वो हाथ से हाथ जोड़ रहा है इसराइल के, भाईजान लड़ाई बंद करो है, बाकी के वो जो है वो बहरीन ओमान और जो है वो तो खैर बिल्कुल ही खामोश बैठे हैं, खैर उन बाकी को क्या कहना है, पाकिस्तान में जॉर्डन तो खैर उन्हीं के साथ मिला होता है, ईरान का जो अटैक था उसमें तो जॉर्डन साहब जो है उन्होंने पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही दे दी थी इसराइल को कि भाईजान सावधान रहो ईरान आप पे अटैक कर रहे हैं, तो ये तो मुसलमानों के माशाल्लाह किरदार हैं, और
ये सिलसिला बहुत पुराना है शायद। हाँ, आप
ऑटोमन एम्पायर उन्होंने ही तोड़ी थी ना,
ऑटोमन एम्पायर तो आप कह लें कि ये 1600 1500 की बात कर रही है ना, ऑटोमन एम्पायर 1600 1500 1600, अगर आप और पीछे चली जाए ना,
800 1000
वाली
गद्दारों से भरी हुई है,
तो उस वक्त भी यही कुछ हो रहा होता, यानी जो क्रूस ये जो सलीबी जंगे जिसको कह लें
क्रूसेड्स, उसी जमाने में थी, वो उन्होंने की थी,
यही हाल हो रहा
था, सेल्जुक टर्क्स ने की थी। हाँ,
जब सेल्जुक टर्क्स जो हैं जब इस वक्त कमजोर पड़ना शुरू हो गए थे, तो और जब ये ईसाइयों ने बैतुल मकदस पे भी कब्जा कर लिया था, तो ये उस वक्त से ही इनकी प्लानिंग थी, आज से नहीं है, उस वक्त भी यहूदी इस ईसाइयों के ऊपर रख के कि भाई तुम इनके साथ लड़ो, पैसा हम तुम्हें देंगे, तुम मुसलमानों को मार, क्योंकि मुसलमानों का उस वक्त भी हाल ये था कि तख्त और ताज के लिए एक दूसरे के गले काट रहे
थे।
ये मिडल ईस्ट की आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, लोग
भी मुगल एम्पायर में क्या हुआ, यही कुछ हुआ ना, भाई भाइयों को मार के तो फिर वो
उन्होंने अपने आप के गले काटे।
यस यस यस,
किसी ईसाई ने किसी ने नहीं काटा आपका गला, आपके अपने भाई ने गला आपका काटा और आप उसका गला काटते रहे।
टीपू सुल्तान की मिसाल आप।
तो आज ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि आज हम इस टाइम में रहते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया आ गया है, आज से 50 साल पहले भी ये जुल्म हो रहा था, लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थी, खबरों का कोई
पता नहीं होता था।
आपको क्या लगता है कि 1920 में 1930 में या
अरे उससे भी पहले हमारे जो खलीफे हैं, जो हमारे खलीफा थे, चार जो खलीफा थे, हजरत उस्मान को किसने मारा भाई, किसने मारा? हाँ, तो बात तो ये कुछ साजिशें थी,
दिस इज नथिंग, ये होना है। अच्छा, ये कुरान में हदीस से साबित है, ये होना है, इन्होंने जाना है, इन्होंने मदीने के दरवाजे तक जाना है और इस पे कोई रोक नहीं सकता। जो जो हदीस है, जो कुरान है, कहता है भाई इन्होंने जाना है, इन्होंने करना है, इनके लिए है, ये अपने मसीहा का वेट कर रहे हैं, इन्होंने उसकी तैयारी करनी है, एक मसीहा जो है वो मुसलमानों के लिए आना है, वो उनका वेट कर रहे हैं। दुख सिर्फ इस बात का हो गया है कि एक रोशन किताब होने के बावजूद
इनकी तैयारी जीरो
में है, आप जो है
जीरो तैयारी, जीरो तैयारी,
तो ये सवाल इस चीज का होगा।
बात तो ये ना कि आपको हम कहते हैं ना यार कल क्या होगा हमें पता नहीं है, एक तो ये चीज है, एक ये चीज है कि आपको बता दिया गया है, फिर भी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर आप भी तैयारी नहीं कर रहे।
आपको मुझे बहुत पहले से ही बता दिया गया, हमारे बाप दादाओं को, उनके दादा, उनकी नस्लों को, सबको बता दिया गया है कि ये होना है और ये हो कर रहेगा। अब आप इससे इनकारी बन जाए, आप ये नहीं जी,
नहीं इनकार तो कर ही नहीं सकते ना, किताब की बात है, ये
फला कर लूंगा,
ये तो
सब ये लोग कह कि यार मैं जो हूँ वो ताकत की बिना पर जो है वो एक नया शहर बना रहा हूँ और ये कर लूंगा, तो कतर बोले तो मैं ये एक से एक अपने स्टेडियम बना दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा, यूएई कहेगा कि जी मुझसे अच्छा तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज मेरे पास है वो तो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, तो दुनिया की हर बड़ी कंपनी वहां पहुंच रही है, ये मसाइल नहीं है, ये तो आपकी पसपाई है। इसीलिए क्योंकि आपने अपनी चीजों को पढ़ना छोड़ दिया, आपने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, आपकी उसकी तालीमात को, फिर हो क्या गया जो मैं, मुझे अक्सर इस चीज पर तकलीफ बहुत होती है, जो आप दोपहर में भी हमारी बात हो रही थी, होता यह है कि जिसका जो काम होना चाहिए ना वो अपना काम करे हर डिपार्टमेंट का, रिगार्डलेस कि उसमें कौन सी नस्ल के लोग शामिल हैं, अगर वो कर रहे हैं तो वो, उन्हें वो काम करना चाहिए। अगर कोई काजी है तो उसने सिर्फ अपना काम फैसले सुनाना है।
आमिर, हमारे अगर मुल्क में,
ये तो प्रॉब्लम हो गया,
तो जर्फ ही नहीं है ना
शहजाद जी, यही प्रॉब्लम
नहीं है ना लोगों का है। वो हर बंदा कहता है कि जी ये जो सबसे बड़ी कुर्सी पे मैं बैठूं, मेरी बात मानी जाए, मैं करूं, जो जिसका काम है तुम्हारे वाली बात है कि वो तो वो कर नहीं रहा है।
वो जिस दिन अपना काम करे ना
करेगा, उसी से तो सुधार
आता है। उस वक्त भी काम ऐसी हो रहा है जो आप बात कर रही है। बेस्ट एग्जाम्पल तो ऑटोमन एम्पायर ही है ना। अब हमारे मुसलमानों में तो इससे बेस्ट कोई एग्जाम्पल नहीं है मेरे नजदीक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम को अगर निकाल के, अगर हम इस वक्त आते हैं हजरत उमर के टाइम को निकाल लें, तो हम ये ऑटोमन एम्पायर जो है, दिस इज द बेस्ट 600 ईयर्स, राइट? 600 ईयर्स इज अ ह्यूज।
बैंड बजाई थी तभी तो क्रूसेड्स,
वो करते क्या थे, वो करते ये थे कि जो
एक दिन लड़ाई जीती है ना, अगले दिन से लड़ाई की, अगली लड़ाई की तैयारी शुरू कर देते थे।
होता था ना,
अगले
जंग लड़ता था।
हाँ जी, हाँ जी।
और जो काजी होता था वो काजी अपना काम करता था, जो कारपेंटर होता था वो अपना कारपेंटिंग का।
हिंदुस्तान में भी जिस वक्त तक गोरे ने हुकूमत की है ना, गोरे ने ऐसे ही किया,
ऑर्गेनाइज है,
जिसका काम डिप्टी कमिश्नर जो है ना, वो सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ही करेगा,
छोड़ दे ऊपर वजीर आजम क्या कहेगा या मिनिस्टर क्या कहेगा,
जो सोल्जर था वो सिर्फ
आपका काम जो आता है आप उसे करें।
जी जी जी, बस ये गोरे ने निजाम यही रखा हुआ था, इसीलिए निजाम बिल्कुल ठीक चलते थे। आपको पता है मेरे अपने घर के अंदर नाना जी जो थे, वो तो उन्होंने चूंकि फ्रीडम फाइट में फाइट किया हुआ था, हिस्सा लिया हुआ था, उनके लिए तो जो है बहुत बड़ी बात थी कि नहीं हमको, दादाजी जो थे वो चूंकि ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, वो तो क्लैश रहता था। दादाजी कहते थे जो गोरे का निजाम था वो बिल्कुल ठीक था, तुम लोगों ने बर्बाद की आजादी लेके इसको।
जी हम तो बहुत मसाइल में पड़ गए। मैं इस बात पे कह के खत्म करता हूँ। अक्सर लोग, मुझे इससे भी इख्तलाफ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग इस बात को समझने की कोशिश कर लें थोड़ी सी। अक्सर हम बात करते हैं, जैसे मैं लीडर की बात कर लूँ कि यार इसका जो पास्ट है वो तो ये था, ये तो पास में चोर था, ये तो पास में डकैत था, ये पास में जो है वो दो नंबरी करता रहा है, ये तो पास में जो है वो कुछ करता रहा है। जैसे मैं एग्जांपल, एक बार एग्जांपल ले लूं, अगर किसी भी डिक्टेटर का पोता, जैसे उमर अयूब की हम बात कर लें, अक्सर हम यहां बैठ के बात करते हैं यार ये इतनी बड़ी जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इसके जो दादा थे वो क्या करते थे,
उसने तो निजाम खराब करने की
बुनियाद डाली। हम क्या उसको इल्जाम देते हैं कि भाई उमर अयूब बातें ना करो, उसको शट अप कॉल दे रहे होते थे। लेकिन अगर मैं अपने, मुझे अगर समझेंगी तो मैं किसी के पास के ऊपर आज पर फैसला नहीं कर, यही हमें इस्लाम भी सिखाता है। अगर किसी के पास पे आज प्रेजेंट में फैसला करना होता ना, तो आज इस्लाम यहां नहीं पहुंचता।
क्योंकि अगर इस लड़के में सुधार आ गया है तो फिर उसका आप
शायद जी, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देके ना इसको फिर आपने न्यूज शुरू कर लिएगा। आपको याद होगा कि खालिद बिन वलीद नाम सबको मालूम है, इन्होंने जो जंगे ओहद में मुसलमानों के साथ किया, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी शहीद हो गए अमीर हमजा, इन्हीं खालिद बिन वलीद की वजह से मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, बहुत मारा मुसलमानों को। फिर एक वक्त ये आता है कि खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार बनते हैं।
बिल्कुल।
तो अगर मुझे बताएं जो
उससे दुनिया
ऐसे, ऐसे जंग में जिसपे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचे भी शहीद हो गए अमीर हमजा, और वो शख्स उसमें शामिल है, उसकी वजह है, और यहां तक खालिद बिन वलीद ने अबू सुफियान से जाकर बात की कि तुम, दिस इज द राइट टाइम, वी कैन अटैक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह कि मैं, मुझे इजाजत दे, मैं इनको कत्ल कर दूं। ये खालिद बिन वलीद साहब की बात कर रहा हूं मैं आपको। अब टाइम गुजरता है, नहीं कहते, अल्लाह की तरफ से आती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जाता है,
कैसी कायापलट
होते हैं,
कैसी कायापलट,
अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होते हैं उनके सामने, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका पास देखेंगे कि यार इसने हमारे साथ की, और ये तो वो शख्स है जो कि मुझे कत्ल करने के ऊपर भी नाउज़ बिल्लाह खड़ा हुआ था, और आज इसको मैं दावत दे रहा हूं कि खालिद बिन वलीद शहादत भी, कलमा पढ़ा और इस्लाम में शामिल हो गए, रिगार्डलेस कि उसने क्या किया पास में, जस्ट फॉरगेट। और दूसरी बात जो हम अक्सर कहते हैं कि यार यहां के जो गोरा है वो आपकी बात को यकीन करता है, हम जो भी आप, जैसे अक्सर हम इंश्योरेंस कंपनी को भी फोन कर लें कि ये विंटर टायर है ना, अगर हम बोल दें हाँ तो वो यकीन हो जाता है।
हाँ, बिल्कुल।
ये मुसलमानों का था रवैया, ये मुसलमान थे कि जो बात कह दी अगर आके किसी ने कह दी,
जबान की वैल्यू थी ना।
फर्ज करने में अगेन खालिद बिन वलीद की, क्योंकि आजकल मैं पढ़ रहा था उनको, तो उनकी शख्सियत को, उन्होंने आके हुजूर सल्लम से कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, ठीक हो गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन्होंने कहा, जबकि वो इतना शदीद दुश्मन, जो
اس پر تو لاوا تھا کہ وہ آپ کو قتل کرنے میں بھی راضی ہو
لیکن اس پر انہوں نے
لیکن جب اس نے کہا کہ میں شہادت دینا چاہتا ہوں میں کلمہ لینا چاہتا ہوں حضرت نے کہا اوکے ڈن
بلیو
یہ تھا ایک مسلمان کا کہنا بھی اور ایک مسلمان کا سننا بھی یہ سب آج ہم باتیں کرتے ہیں نا گورا جو ہے بڑا اچھا ہے جی وہ تو آپ سچ بولتا ہے راجن سچ مسلمان بولتا تھا اور سچ مسلمان کو ہی بولنا چاہیے یہ کرسچنز یہودی عیسائی جتنے ہم کنٹریز میں یہاں بیٹھے ہم ایگزامپل دیتے ہیں دے آر فالوئنگ دا ایگزیکٹ اسلام یا وہ قرآن کی تعلیمات جو ہمیں دی گئی تھی ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ معاف کر دو کسی کے بھی پاس سے جج مت کرو کہ اس نے کیا کیا تھا ورنہ تو کبھی بھی حضرت عمر بھی شامل نہیں ہوتے وہ حضرت عمر تھے جو گلیوں میں گھومتے لوگوں کو جو ہے وہ گردنیں اڑا دیتے تھے اور پھر جب خلیفہ بنے تو انہی لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے کہ یار کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا
ساری
ساری رات مدینے گلیوں میں
گھومتے تھے
یہ ہے ایگزامپلز یہ اسلام ہے جس کی ہمیں بات کرنی چاہیے جسے آگے بتانا چاہیے لوگوں کو کہ آج جو کوئی بھی ہے اس کے پاس سے اس کو جج مت کریے خدا را اس نے جو کیا ہوگا ٹھیک ہے اللہ جب چاہے دلوں کے حال بدل سکتا ہے
بالکل صحیح
اس پر ایمان رکھیں اور کوشش کریں دعا کریں اچھا پھر دعا کے ساتھ ساتھ آپ نے پریکٹیکل شروع سے اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے دعا کے ساتھ ساتھ آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے یعنی آپ نے جہاد کرنا ہے اب یہ جہاد ضروری نہیں کہ تلوار لے کے نکل جائے
نہیں نہیں چھوٹی چھوٹی
جہاد آپ کے نفس کے خلاف بھی
یس
جہاد آپ کے جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف بھی
اس کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے
دعا سے حل ہر چیز نہیں ہوگی
یہ کام بھی کرنا پڑے گا
اگر دعا سے ہی ہو رہی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دعا کر دیتے کہ یہ اللہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے یا مکہ فتح ہو جائے
بالکل کام بھی کرنا
کیا سیکنڈ لگتا اللہ کے لیے مشکل تھا نہیں تھا اللہ کے لیے مشکل
دنیا بنائی
لیکن لڑا جنگ کی جہاں غلط تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی اس کے خلاف لڑائی بھی کی جنگ بھی کی خود پریکٹیکلی جنگ کی تو ہم اس چیز سے پیچھے آتے ہیں ہم ڈرتے جا رہے ہیں ہمارے اندر خوف پیدا کر دیا ہے جینے کا ہمیں آخرت سے دور کر دیا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے 60-70-80 سال کے بعد یہاں مر جانا ہے یہ گھر گاڑی پیسہ سب یہیں رہ جانا کوئی پرواہ نہیں اس کی تو بہرحال لوگوں کو جو ہے چیزوں کو سمجھنا چاہیے میں آج فرائیڈے کا خطبہ دے دوں
نہیں نہیں اچھی بات ہے نہیں نہیں خطبے کی بات نہیں ہوتی ہے اچھی بات آپ جب بھی کریں گے نا جب بھی
لوگ پڑھتے نہیں ہیں
آپ جب بھی
ہمیں دور کر دیا پڑھائی سے علم سے دور کر دیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے
علم حاصل کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے مسلمان سب سے کم کتابیں پڑھتے ہیں سب سے کم مسلمان پڑھتے ہیں اور پاکستان میں تو خیر ہم کیونکہ پاکستانی ہے پاکستان کی زیادہ بات کرتے ہیں بالکل کلچر ہی نہیں ہے بک پڑھنے کا بالکل بچوں سے اگر آپ پوچھ لیں کہ رسول گامزہ آف کون ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون ہے کون نہیں کلاسک تو ہم ویسے بھی نہیں پڑھتے بالکل نہ کسی ہم جو ہے نوبل لوریٹ کی ہم بکس پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے ریجن کے اندر سب سے زیادہ بکس ویسے تو رقبے کے حساب سے اور پاپولیشن کے حساب سے انڈیا بہت بڑا ہے لیکن سب سے زیادہ بکس جو ہیں ہمارے اس خطے میں چائنا اور جاپان کے اندر پڑھی جاتی ہے
جی
بے تازہ بکس
میں بتا رہا ہوں نا جو ترقی کی کتاب اور جو کامیابی کی کتاب یہ میسج جو ہمارے اچھا دیکھیں پانچ وقت مؤذن جو ہے وہ اذان میں کہتا ہے یار حی علی الصلاح حی علی الفلاح وہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ یار اگر فلاح چاہتے ہو کم کتنے لوگ اس چیز کو میسج کو جواب دیتے ہیں یہ کتنے لوگوں کو یہ میسج سمجھ آتا ہے کہ حی علی الفلاح کا مطلب کیا ہے
اصل میں
وہ کیوں آواز دے رہا ہے پانچ وقت تو دیتا ہی ہے نا لیکن ہم میں سے کسی کو سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے اس چیز کو نہ ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں اسی لیے بچے یہاں دیکھتے ہیں وہ 16-17 سال کی آج بھی لڑکی وہ جو دیکھ رہے ہیں جس کی تصویریں ہو رہی ہیں 17 سال کی ایک لڑکی ہے جس نے وہ گاڑی چرانے کی کوشش کی اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا واٹر لو میں 19 سال کے 18 سال کے بچے ہیں جنہوں نے مال میں کوئی چوری کی ہے گھر میں گھس جاتے ہیں نارتھ یارک میں مسز آگا میں کیا ہو رہا ہے
بس عامر ہم بات نہیں اب اس پہ اتنی زیادہ کر سکتے لیکن آپ کو پتا ہے یہی
16-17-18
سال کے بچے جو ہے نا آپ کو پتا ہے
یہ نسل تباہ ہو رہی ہے
ہاں یہ گینگز بنا بنا کے ایک دوسرے کی
نسل تباہ کر رہی
ہے تصویریں جو ہیں وہ اس پہ انٹرنیٹ پہ ڈال کے پیسے کما رہے ہیں اس سے کین یو امیجن کہ پیسے کمانے کا اتنا یہ ایزی طریقہ
نسل تباہ ہو رہی ہے اور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے تو وہ جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ یار یو اے جو مڈل ایسٹ ہے وہ دیکھ رہا ہے تباہی لیکن کچھ نہیں کر رہے میں دور نہ جائیں ہم تو اپنے گھر کی بات
اور سارے اس کے گرد ہیں دیکھو آپ سارے اس کے گرد ہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہے اس ٹڈی جتنے ملک پر پہنچنا
کیوں ایمان کی کمزوری ہے ایمان کی کمزوری ہے بیسیکلی اللہ نے دولت شہرت ہتھیار سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن وہ ایمان وہ جذبہ نہیں ہے جس کے تھرو آپ ان کو شرط دے سکتے
نہیں وہ کہتے ہیں سانو کی ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ
ਬਸ
ਜਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਸਾ ਬੋਲ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਓ ਯੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਬਸ ਐਸੇ ਥੋੜੀ
ਹੈ,
ਯੇ ਤੋ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ
ਔਰ ਮੈਂ ਅਬ ਜਬ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੋ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਐਗਜੈਕਟ ਸੇਮ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਜ ਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ੇ, ਆਜ ਵੀ ਵਹੀ ਚੀਜ਼ੇ ਫੇਸ,
ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕਾ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਵਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ,
ਸੇਮ
ਵਹੀ ਵਹੀ ਹੈ,
ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ,
ਬਿਲਕੁਲ ਵਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਾਦਰੀ ਵਹੀ ਹੈ, ਵੋ ਬਹਾਦਰੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਜੈਸੀ ਅਸਲਾਉਦੀਨ ਯੂਬੀ ਜੈਸੀ ਲਾਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਉਸਕੋ ਕਹਾ ਨਾ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਵੋ ਤੋ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਂਗੇ, ਤੋ ਤੁਮ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ, ਤੁਮ ਅੰਦਰ ਤੁਮ ਜੋ ਹੈ ਤੁਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੋ ਤੁਮ ਮੈਸੂਰ ਕੇ ਤੁਮ ਅੰਦਰ, ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੜੂੰਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਗੀਦੜ ਕੀ 100 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਬਿਹਤਰ, ਖੁਦ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਕਟਵਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਸੂਰ ਕਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਊਂ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਵੋ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ, ਤੋ ਯੇ ਐਸੀ ਬਹਾਦਰ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਨੇ ਯੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋ ਜੋ ਰਿਚਰਡ ਲਾਇਨ ਹਾਰਟ ਜੋ ਥਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਨ ਥੇ ਨਾ, ਵੋ ਕ੍ਰੂਸੇਡਸ ਆਪਨੇ ਜੋ ਕਹਾ, ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੋ ਉਨਕੋ ਕਹਾ ਸਲਾਹਉਦੀਨ ਯੂਬੀ ਕੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਮ ਆਓਗੇ ਤੋ ਵੋ ਬਗੈਰ ਤਲਵਾਰ ਬਗੈਰ ਗਾਰਡਸ ਕੇ ਚਾਹੇ, ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੀ ਬੇਟੀ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋ ਤੁਮਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੋ ਇਤਨਾ ਬੇਗੈਰਤ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ,
ਅਸੂਲ
ਐਡਮਾਇਰ ਰਿਚਰਡ ਦਾ ਲਾਇਨ ਹਾਰਟ ਆਲਸੋ, ਇਸੀ ਲਈ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਨ ਹਾਰਟ ਪੜਾ ਇਸ ਵਾਕੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਗਾਰਡਸ ਕੇ ਬਗੈਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਮ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੇ ਖਲੀਫਾ ਹੋ, ਜਨਰਲ ਹੋ ਇਤਨੇ ਬੜੇ, ਤੁਮ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪੇ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੜਨੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੋ ਉਧਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਅ ਟਾਪ ਗੈਸਟ ਉਸਕੇ ਵੋ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਲੋਗੋਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਯੇ ਤੋ ਤੁਮਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਆਇਆ ਰਿਚਰਡ, ਮਾਰ ਤੋ ਇਸਕੋ ਇਸਸੇ ਬੜਾ ਔਰ ਕਿਆ, ਯਹੀ ਤੋ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੜ ਰਹਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਕ੍ਰੂਸੇਡਸ, ਇਸਕੋ ਮਾਰੋ, ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੇ, ਮੇਰਾ ਗੈਸਟ ਹੈ ਯੇ, ਯੇ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਮੇ ਹੈ,
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਦੌਰ ਮੇਂ ਹਮ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈਂ,
ਹਾਂ ਯੇ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਆ ਜੋ ਹੈ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਇਤਨੀ ਰਹੀ ਹੈ,
ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਰਹੇਂ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਲ,
ਦੋ ਪੈਸੇ ਕੀ ਆਮਿਰ ਏਕ ਦੋ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਤਨਾ ਝੂਠ ਮਕਰ ਫਰੇਬ ਡਰਾਮੇ
ਐਸੇ ਹੀ
ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਬਸ ਓਹੋ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੀ ਦੋ ਪੈਸੇ
ਕੀ ਲੱਜ਼ਤੋਂ ਮੇਂ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਲੱਜ਼ਤ ਮੇਂ ਲੱਗ ਗਏ,
ਵਰਨਾ ਤੋ ਠੋਕਰ ਮਾਰੇ ਬੋਏ ਜੀ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤੁਮਾਰੇ, ਇਨਸਾਨ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੀ ਲੇਗਾ 100 ਸਾਲ ਸੇ ਉੱਪਰ ਤੋ ਬਹੁਤ ਕਿਤਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 102 ਜਾਂ 5 ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਜੀ ਵੀ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੋਈ ਜੈਪਨੀਜ਼, ਤੋ ਹਮ ਉਸਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਤੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਕਿ ਯਾਰ ਯੇ 100 ਸੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿਆ
70-80 ਮੈਕਸ 80-85 ਵੈਸੇ,
ਉਸਮੇ ਸੇ ਆਧਾ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪ ਆਪਣੇ 8 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਨਿਕਾਲ ਲੈ ਨਾ, ਤੋ ਆਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਸੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ,
तो जो सोता है वो खोता है,
बस नहीं सोना मतलब कहते हैं 8 घंटे तो नींद है ना एक ही, तो 1/3 आप सब समझ लें 8 घंटे आप सोने में,
हर कोई नहीं सोता ना 8 घंटे,
एवरेज बात है कि 8 घंटे आप सो लें,
6 घंटे आप एवरेज लगाओ
और आप 8 घंटे काम कर लें, 2-4 घंटे दो उधर का काम कर लें, तो आपकी आधी तकरीबन जिंदगी करीब करीब जो है वो सिर्फ सोने में गुजरेगी, तो क्या करेंगे आप दुनिया, कुछ भी
क्या करेंगे कुछ नहीं। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑन्टारियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विरिज टेस। विरिज टेस के दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक है मिसेस सागा में, उसका नंबर है 9052323663, और एक है ओकविल में, उसका नंबर है 9052262294। चांदी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, इसमें आपको कोई भी अपने छोटे बड़े इवेंट्स कराने हैं प्लीज आप इनसे संपर्क करें, हैं जी, तो इनको आप कॉल कर सकते हैं 6479653823। एंड पायल ज्वेलर्स, यहां पे बड़े जबरदस्त ज्वेलरी होती है आपकी, कोई भी छोटे बड़े अगेन कोई इवेंट्स हैं तो आप, यानी कि जैसे अकीका है, शादी तो बड़ा है, गैर निकाह है, कोई किसी की कुछ हुई है, कोई एनिवर्सरी है, कुछ आपको गिफ्ट्स देने हैं, तो आप इनके पास जरूर जाएं, इनका नंबर है 9057907879। ओके जी, अच्छा जनाब, सबसे तो बड़ी आपको पहली खबर, चूंकि ये जरा दिल दुखाने वाली खबर है, मैंने कहा आपको दे दूं, इस वीकेंड टोरंटो मत जाने क्योंकि गार्डनर एक्सप्रेस बंद रहेगी। आमिर ने इसके ऊपर कमेंट दिया था, गार्डनर एक्सप्रेस खुलती कब है, तो उसने कहा ये खुलती कब है भाई,
आप हिसाब कर लें, पूरी न्यूज़ निकालें, साल में कितने दिन होते हैं,
ये भी 8 घंटे सोती रहती है, इसने भी अपनी आधी जिंदगी सोने में गुजार दी है,
खत्म ही कर दें इसको,
खत्म ही कर दें इसको जी। अच्छा जी, तो स्टार्टिंग टूडे यानी कि फ्राइडे से ये जो गार्डनर है ये क्लोज रहेगी 10 AM संडे तक, सिटी ने कहा जी कि कुछ सेक्शंस ऑफ एक्सप्रेस वे जो है उनको खोला जाएगा फेजेस के अंदर, क्योंकि यहां पे काम हो रहा है, रिपेयर्स हो रही हैं, और वो रिपेयर्स बहुत ज्यादा हो रही हैं जो डफरिन स्ट्रीट ब्रिज है उसके ऊपर भी, और यॉर्क ऑन रैंप है वो भी बिल्कुल क्लोज रहेगा 5 AM पे मंडे को रिपेयर्स के लिए। ट्रोनो एरिया के जो राइडर्स हैं उनको बताया जा रहा है, सिटी कह रहा है कि आप डिस्ट्रप्शंस जो है फेस कर सकते हैं। सैटरडे को कोई भी सबवे सर्विस नहीं चलेगी बिटवीन सेंट क्लेयर एंड यॉर्क मिल्स स्टेशंस, क्योंकि यहां पे ट्रैक का काम चल रहा है, ट्रेन्स जो हैं लाइन 2 के ऊपर जो है बिल्कुल स्टॉप कर जाएंगी पेप स्टेशन के ऊपर ऑन सैटरडे एंड संडे, क्योंकि यहां पे भी लाइन कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जो बस सर्विस है अलबत्ता वो चलती रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी, और उसके जो बस के स्टेशन हैं वो खुले रहेंगे। शटल बसेस जो हैं वो भी सप्लीमेंट करेंगी इन सर्विसेज को। गो सर्विस जो है ट्रांजिट सर्विस बैरी में उसको टेम्पररी सस्पेंड किया जाएगा सैटरडे और संडे को। तो जनाब ये गुड न्यूज मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले सुनाए फिर आगे जो है वो चले। पीसी पार्टी ने जनाब जीत रखी है अपनी जो ईस्टर्न ऑन्टेरियो के अंदर जो इनकी सीट थी उसके लिए। टायलर एल्सॉप जो है वो जो म्यूनिसिपल काउंसलर थे बेलविल के अंदर वो जीते हैं यहां पे बे ऑफ क्विंट के अंदर ये जो बाय इलेक्शन थे, जहां से कि आपको पता ही है कि टॉड स्मिथ जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। फोर्थ साहब जो है उन्होंने कहा जी कि ऑन्टेरियो की लिबरल लीडर बॉनी क्रॉम्बी जो है चूंकि वो कार्बन टैक्स सपोर्ट करती हैं और आपके गैस और बियर के टैक्सेस रेज कर देंगी, तो इसलिए लिबरल पार्टी को मत दें आप वोट। क्रॉम्बी साहब ने कहा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। लिबरल जो कैंडिडेट थी शॉन कैली वो जो हैं फिर हार गए यहां से, लेकिन वो जाहिर है कि नंबर 2 रहे, वो थे काउंसलर यहां पे वो भी बेलविल के अंदर और लोकल रेडियो जो है उसके अंदर काम भी करते थे, उनको मिले 33% वोट्स। और एनडीपी जो है उसकी अमांडा रॉबर्टसन थी तो वो स्कूल बोर्ड ट्रस्टी और वो थर्ड नंबर पे आई, उनको 23% जो है वो वोट मिला है। तो लेकिन इस लिबरल्स ने इस चीज को बड़ा सेलिब्रेट किया है, उन्होंने कहा जी कि नहीं कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका अभी भी ये मतलब है कि ऑन्टेरियो के अंदर हम ही सेकंड जो है बड़ी पार्टी हैं। तो मतलब है ठीक है, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप जरूर समझें। और जो ग्रीन की तरफ से थी लॉरी डॉर्थविक थी और वो जो है वो फिर जाहिर है कि चौथे नंबर पे रही, तो जीते यहां से जी पीसी पार्टी फिर से। तो बड़ी मुबारक दी प्रीमियर फोर्ड ने। क्यूबेक के जो प्रीमियर है जी फ्रैंका लगा, उन्होंने जो ब्लॉक की बैकवा को कहा था और इसी तरह पार्टी की बैकवा को कहा और एनकरेज किया कि भई आप हमारा साथ दें नेक्स्ट वीक, जिस वक्त ये ट्रूडो की गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए मोशन लेकर आएंगे कंजर्वेटिव पार्टी, तो आप हमारे साथ खड़े रहे। अब इसमें जो बीसी लीडर जो है वो यानी कि ब्लॉक की बैकवा के जो लीडर हैं फ्रैंका ब्लांशे, उन्होंने कहा जी के नहीं मैं अपना खुद का जजमेंट यूज करूंगा। और हालांकि फ्रैंको लगाने कहा था कि ट्रूडो साहब जो हैं वो बड़ा डिसरिस्पेक्ट करते हैं प्रोविंसेस को, उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी जजमेंट यूज करते हैं और हम अपने तरीके से चीजों को चलाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि बड़े अरसे से ये जो है फ्रैंको लगा ये एक्यूज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को भी, ट्रूडो को और लिबरल्स को भी, कि ये जो जुडिशियल मैटर्स हैं प्रोविंशियल जो मैटर्स हैं उनके अंदर ये करते हैं इंटरफेयर और असाइलम सीकर्स को टेम्पररी इमिग्रेंट्स जो हैं उनको यहां पे भेज रहे हैं। ब्लांशे ने कहा कि हमारे अदर प्लान्स हैं, हम जो है बहुत सारा काम करवाना चाहते हैं क्यूबेक के लिए, तो इसलिए हम जोर देते रहेंगे लिबरल्स को कि पार्लियामेंट में अगर हमारा सपोर्ट आपको चाहिए तो आप हमारे साथ खड़े रहें। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो ये भी कहा कि हम ये जो टोरीज जो मोशन लेकर आ रहे हैं नो कॉन्फिडेंस की, इसके साथ हम नहीं खड़े रहेंगे। पॉलीएफ साहब जो थे उन्होंने कहा था जी कि उन्होंने कहा कि पॉलीएफ साहब की ये जो मोशन है ये इसलिए नहीं है कि ये ट्रूडो साहब को नीचा दिखाना चाहते हैं और उन्होंने इमिग्रेशन पे जो काम या असाइलम सीकर्स पे काम ठीक से नहीं किया, उनका और ही कुछ जो है वो एजेंडा लगता है। पार्टी की बैकवा के जो लीडर हैं सेंट प्रे प्लानदॉन, उन्होंने जो है उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल फ्रैंकोआ ब्लांशे जो हैं उनकी मैं बात से मैं बिल्कुल मानता हूं और जो हम बिल्कुल गवर्नमेंट को टॉपल नहीं करना चाहते हैं, और वैसे भी चाहे पॉलीएव है चाहे जो है वो ट्रूडो है जो इनमें कुछ भी जो है हमको नहीं मिलने वाला है एज फार एज लिंग्विस्टिक फाइनेंशियल एनवायरमेंटल और सोशल जो है वो स्टफ इज कंसर्न्ड. तो मतलब ये जो कंजर्वेटिव पार्टी का जो आइडिया है कि इसकी गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए, ट्रूडो की गवर्नमेंट को, ये इतना कुछ जोर पकड़ता नजर नहीं आ रहा है. कल तो हमने आपको जगमीत सिंह का बता ही दिया था कि वो क्या कह रहे हैं. यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जो है जी, उन्होंने अपने इसराइली काउंटर पार्ट से 4 दफा इस वीक में बात की है, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा कंसर्न है कि ये जो लेबनान इसराइल बॉर्डर के ऊपर लड़ाई है ये कहीं भड़क के सारे इलाके के अंदर ना फैल जाए. इसराइल को लगता है कि हजारों जो इनके रेजिडेंट्स नॉर्थ में से चले गए हैं उनको हम वापस ला सकते हैं. यूएस जो है इसके साथ डिफर करता है. पेंटागन के जो चीफ हैं लॉयड ऑस्टिन और दूसरे जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी कहा है कि यह बिल्कुल गलत है, यह एस्केलेटरी जो आपका पैटर्न है इसको खत्म करें. बाइडन के जो एड हैं एमोस हॉटस्टीन उन्होंने एक मैसेज भेजा है नतन्याहू को और योव गैलेंट को और उन्होंने कहा जी कि यह एस्केलेशन लेबनान इसराइल बॉर्डर पे बिल्कुल खत्म करें. आज जो हमले किए हैं इसराइल में उसमें उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इब्राहिम अकील जो कि इनके हिजबुल्ला के एक कमांडर थे उनको हमने मारा है और उसके बाद चीजें जो है भड़क सकती हैं जिसके बाद लोगों को काफी डर लग रहा है. ऑस्टिन जो है उन्होंने योव गैलेंट से भी बात की है बड़ी दफा और उनको भी समझाने की कोशिश की है. पेंटागन जो है उसने एक रीड आउट पूरा जो है वो पब्लिश किया जिसमें कि बताया गया है कि जो है ये ऑस्टिन साहब क्या बात कर रहे हैं. ऑस्टिन साहब ने इसके अलावा एक्स के ऊपर भी कहा कि जी हम इसराइल की डिप्लोमेटिक हम उसको कहते हैं कि आप डिप्लोमेटिक टॉक्स करें और ये टेंशन जो है इसको आप रिड्यूस करें लेबनान के हिजबुल्ला के साथ ऑन द बॉर्डर. इसके अलावा दूसरे जो सीनियर पेंटागन के ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं जी कि हम भी इसराइल के काउंटर पार्ट्स के साथ जो है वो हैं इन टच हैं. इसराइल कहता है कि तकरीबन 70,000 इसराइलीज जो है वो नॉर्थ को छोड़ के गए हैं और साउथ की तरफ चले गए हैं. हम अपना नॉर्थ ऐसे खाली नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे सारे लोग वापस आए. इसके साथ साथ 100,000 जो लेबनीज हैं वो भी अपना घर जो है वो छोड़ के नॉर्थ की तरफ मूव कर गए हैं विच इज नियरर टू द कैपिटल बैरूत. यूएस जो है उसने कहा जी कि हम आपके साथ तो खड़े हैं फॉर योर राइट टू डिफेंड योर सेल्फ, लेकिन हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं कि आप लेबनान के अंदर इन्वेड करें और उसके ऊपर जो है वो एक्सपैंड करें अपना मिलिट्री कैंपेन इनसाइड लेबनान. तो ये जनाब चीजें जो हैं काफी खराब नजर आ रही हैं और वही जो मैं और आमिर बात कर रहे थे कि हमारे अरब फ्रेंड्स जो हैं वो सो रहे हैं और बस वो सिर्फ दबा दब लगे हुए हैं अपने मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए और अपने मुल्कों को अच्छा करने के लिए. बाकी पैलेस्टीनियंस बाहर में जाएं उनके मतलब से उनको कुछ लेना देना नहीं है. कमला हैरिस साहब जो है जी कल बड़े जबरदस्त स्टाइल में ओपरा विनफ्री का जो शो होता है बड़ा ही हाई एंड आपको पता है उसके अंदर वो कल पहुंची थी. शी वांट्स टू वू ऑल दोज अनडिसाइडेड वोटर्स जिन्होंने कि अभी सोचा नहीं है कि वो किसको जो है वो वोट देंगे. ये लाइव स्ट्रीम यूनाइट जो है ये यूएस इवेंट था एक मिशिगन के अंदर जिसमें कि बहुत सारे और भी सेलिब्रिटीज आए हुए थे जैसे कि जेनिफर लोपेज, क्रिस रॉक, जूलिया रॉबर्ट्स, मैरिल स्ट्रिप और बहुत सी दूसरी औरतें और लोग आए हुए थे जो कि बात करना चाहते थे अबॉर्शंस के ऊपर और गन्स के ऊपर. हैरिस जो है उन्होंने अपनी डिस्कशन इस तरह से ओपरा से शुरू की कि भाई हम जो है हमारे बीच में डिविजन्स पैदा की जा रही हैं लेकिन हम बड़े स्ट्रांग हैं, हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर है कि हम सब हमारा जो कॉमन गोल है हम उस पर खड़े रहें क्योंकि हमारे बीच में कॉमन चीजें ज्यादा हैं. ओपरा ने इनसे पूछा कि आपका यह नया कॉन्फिडेंस आप में किस तरह आया. उन्होंने कहा कि जिस वक्त बाइडन साहब पीछे हटे थे तो फिर एक मोमेंट जो होता है हर किसी की जो लाइफ में आता है उसमें मुझे लगा कि मुझे स्टेप अप करना पड़ेगा. मैंने एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की और सेंस ऑफ पर्पस और मैंने कहा कि अब मुझे बाहर निकल के लड़ना पड़ेगा. इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इकोनॉमी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, इमिग्रेशन, टैक्स इंसेंटिव्स, जॉब्स इन इकोनॉमी, इन सब के ऊपर फिर वो बात बताती रही कि वो क्या क्या कुछ करेंगी. उसमें सबसे बड़ी बात ये उन्होंने की कि जो स्मॉल बिजनेसेस जिनको भी $5,000 मिलते हैं तो 5,000 में कौन सा बिजनेस चल सकता है, तो मैं इसको बढ़ा के 50,000 करूंगी और ये टैक्स डिडक्टेबल होएगा. जब गन्स के ऊपर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मेरे पास भी गन है जो इनके वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट टिम वॉल्स उनके पास भी है, तो अगर कोई हमारे घर में घुसे तो हम तो जाहिर है उसके ऊपर गोली चलाएंगे. फिर हंसना शुरू हो गई, कहती है नहीं ये तो मैंने ऐसे कहा, मुझे आई शुडन हैव सेड दिस, लेकिन गन्स के मसले पे मेरा स्टाफ जो है एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसके ऊपर हम फिर बाद में बात करेंगे. तो काफी ये जनाब हाई प्रोफाइल इवेंट का कल का रहा। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है जी, और हम कह रहे हैं कनेडा के हालात या पाकिस्तान के अच्छे नहीं है, यूके के हालात बेतहाशा खराब हैं। आज ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट कह रही है कि इनकी जो बोरोइंग है वो हायर देन फोरकास्ट है, यानी कि जितना इन्होंने फोरकास्ट किया था उससे भी हायर है इन फर्स्ट फिफ्थ मंथ्स ऑफ द फिजिकल ईयर, और ये जो है इसने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया है चांसलर रेचल रीव्स के ऊपर to raise taxes to balance the budget next month. Deficit जो है वो 85.4 billion US dollar को touch कर रहा है, कर रहा था between April and August, और this is 8.2 billion US dollars more than the Office for Budget Responsibility expected in March. तो यानी आप सोचें कि 8 बिलियन से ज्यादा जो है वो ऊपर चला गया जो एक्सपेक्टेशन से था। लास्ट मंथ जो शॉर्टफॉल था वो दैट वाज 18.2 बिलियन विच इज 1.46 बिलियन यूएस डॉलर्स मोर देन इकोनॉमिस्ट फोरकास्ट, जो कि थर्ड हाईएस्ट अगस्त ऑन रिकॉर्ड है। नेशनल डेट जो है इस वक्त इट इज हिटिंग 100% ऑफ जीडीपी, कैन यू इमेजिन 100% ऑफ जीडीपी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1961। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो यूएस फेडरल रिजर्व है उसने 50 बेसिस पॉइंट्स जो काटे थे उसकी वजह से आज यूएस स्टॉक मार्केट जो है बहुत ज्यादा जंप की, और इंडस्ट्रीज ने इसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया। उन्होंने कहा जी कि ये कट्स पहली बार आए हैं 4 साल में और ये अब ईज करेंगे इकोनॉमिक प्रेशर्स ऑन हाउस होल्ड और इन्फ्लुएंस करेंगे ये जो नवम्बर का भी प्रेजिडेंशियल इलेक्शन जो है आने वाला उसको भी। तो ये जनाब जो हैं चीजें बड़ी खतरे में नाक होती जा रही हैं, ठीक है जी। अच्छा जनाब, एज इफ दे हैड नॉट पेड इनफ टू यूक्रेन, आज यूरोपियन यूनियन ने फिर से प्लेज किया है कि हम यूक्रेन को 39 बिलियन यूएस डॉलर्स और देंगे एज पार्ट ऑफ द प्लान बाय G7 कंट्रीज टू रेज 50 बिलियन यूएस डॉलर्स थ्रू प्रॉफिट्स फ्रॉम फ्रोजन रशियन स्टेट एसेट्स। ये लोन का अनाउंसमेंट जो है ये आज यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने आज कीव गई हुई थी, वो वहां पे उन्होंने की है, और उन्होंने कहा जी कि ये हेल्प करेगा यूक्रेन को अपना एनर्जी ग्रिड और ये जो एनर्जी की कैपेसिटी है उसको अपग्रेड करने में, क्योंकि अब सर्दियां जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी कहा कि हमने डिसाइड किया है कि आप डिसाइड करें कि ये आपने फंड्स कहां पे यूज करने हैं। ज़ेलेंस्की ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारी प्रायोरिटी है टू रीबिल्ड एनर्जी नेटवर्क्स एंड द बॉम्ब शेल्टर्स, इम्प्रूव स्कूल्स, बाय मोर वेपन्स। जून के अंदर G7 के जो कंट्रीज हैं जिसमें कि हम साडा कनेडा भी है, कनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, इन्होंने एग्री किया था कि ये 50 बिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है ये यूक्रेन को देंगे। तो जनाब ये बस दबा दब लोन देते रहेंगे, वो दबा दब वेपन्स लेते रहेंगे, और ये जनाब ये लड़ाई जो है ये चलती रहेगी। जी दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ए कंसल्टेंट इंक, शावेद साहब होते हैं, वो कहते हैं अगर आपके बच्चे 12 ईयर से छोटे हैं तो आपको 12,000 से 60,000 का गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो मिल सकता है, आप इनको कॉल कर लें। इनका नंबर है 6477690241 एंड डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, डॉक्टर नाजिया रहमान यहां पे होती हैं, और वो कहती हैं कि आपको कहीं पे भी मेरे पास आना है, यानी कि एक इनका ट्रेनिंग है, 65 Montpelier Street, Unit E104, Brampton, और वो कहती हैं अगर आपको कोई भी दांतों का मसला है, आपको ब्रेसेस चाहिए, कॉस्मेटिक एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री चाहिए, तो आप मेरे पास आओ। बड़ी ही स्वीट, बड़ी काइंड किस्म की डॉक्टर हैं डॉक्टर नाजिया रहमान, आप इनके पास जाएं। इनका नंबर है 9058721100 एंड जनाब जैस्मिन परमार जो है 21st यानी कि कल जो है अपनी ग्रैंड ओपनिंग कर रही है अपनी फाइनेंशियल कंपनी की कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, और ये आपको बहुत सारे जो है वो कमर्शियल, रेजिडेंशियल, प्राइवेट और कंस्ट्रक्शन मॉर्गेजेस और फाइनेंसिंग और रिन्यूल्स की आपको सर्विसेज देती हैं। इनका नंबर है 6479235659 ये है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर इन लाइन विद द लाहौर हाई कोर्ट डायरेक्टिव्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अब ये फैसला किया है कि वो पीटीआई को रैली करने का कल लाहौर में इजाजत दे रहा है, और जो स्पोक्स पर्सन है फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा जी कि ये परमिशन तो कंडीशनल है फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीज, और हमने इनको कहा है कि आप अपना ये रैली जो है कैटल मार्केट काना के अंदर करेंगे। हालांकि पीटीआई ने कहा था कि हमको मीनारे पाकिस्तान के ऊपर अपना ये करने दो। इससे पहले जो है लाहौर हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था पीटीआई को कि एक एप्लीकेशन सबमिट करें सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को रैली होल्ड करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया डीसी को कि वो डिसाइड करे 5 PM के वो क्या चाहता है। कोर्ट ने ऑर्डर्स उस वक्त दिए जिस वक्त जस्टिसेस मोहम्मद तारिक नदीम एंड जस्टिस फारूक हैदर ने ये जो प्लीज फाइल की गई थी बाय पीटीआई लीडर्स आलिया हमजा एंड शेख इम्तियाज महमूद के हमको मीनारे पाकिस्तान पे करने दें। उन्होंने कहा जी कि हमने बहुत दफा रिक्वेस्ट की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमको लाहौर के अंदर अपना पब्लिक रैली करने दो, लेकिन ये हमें इजाजत नहीं दे रहे हैं। इसके ऊपर बात करते हुए इमरान खान साहब ने भी कहा कि ये डू और डाई सिचुएशन है, मैं 15 महीने से जेल में हूं, मैं और भी रह सकता हूं, लेकिन आपको भी अगर एक दफा कोई जेल में जाना पड़ता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं पिछले 28 साल से मैं अपने जो पार्टी है उसको यही बोल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव द राइट टू असेंबल। आज ये बात कर रहे थे रिपोर्टर से अडयाला जेल के अंदर, और इन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लास्ट इंस्टीट्यूशन था जिसमें के लोग जो थे उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे कि वो कुछ चीजों को बचा सकते हैं, अगर उसको भी बर्बाद कर दिया गया तो पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। तो भाईजान आपका ख्याल है अभी पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है, अभी भी बनाना रिपब्लिक ही है? क्या बात कर रहे हैं आप खान साहब, बहुत ही नाइव हो के आपने बात की आज। लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि स्पीकर अय्याज सादिक का जो लेटर है इन एन अटेम्प्ट टू जस्टिफाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉन कम्प्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो था उसने इनको कहा था कि भई ईसीपी को के फौरन जो हमने हुक्म दिए हैं उसको आप लगाएं, और उन्होंने कहा जी कि अगर ये इनके ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट कोर्ट के नहीं करेंगे तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा। सादिक साहब जो हैं एक्सपर्ट्स ने कहा कि उनके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कॉन्ट्ररी टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने चूंकि जो डायरेक्शन दिया है उसके बेस के ऊपर इट इज बाइंडिंग ऑन ईसीपी के वो उनकी बात माने। सादिक साहब ने कल एक लेटर लिखा था ईसीपी को कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है रिजर्व सीट्स के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता अंडर अमेंडेड इलेक्शन एक्ट 2017। ईसीपी ने इससे पहले नोटिफाई किया था 39 ऑफ 80 पीटीआई नेशनल असेंबली मेंबर्स को और कहा था कि हमको गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग दिस एंड अदर लॉ मेकर्स। उसके ऊपर अय्याज सादिक ने कहा कि आप ये इम्प्लीमेंट मत करो, लेकिन इसके ऊपर वही बात आज एक्सपर्ट्स कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे देती है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट बिल्कुल किया जाना चाहिए, और जो नेशनल असेंबली का स्पीकर होता है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने नलीफाई किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन को टू चेंज इलेक्शन ट्रिब्यूनल हियरिंग इलेक्शन पिटीशंस रिलेटेड टू अलेज्ड रिगिंग इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इस्लामाबाद इन फरवरी 8 इलेक्शंस। उन्होंने ये जो ऑर्डर जो है कहा है कि अपॉइंट किया जाए रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा को एज जज ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिप्लेसिंग जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, और उन्होंने कहा है कि जी ये जो है इनको करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है उसने डिसमिस की थी ये पिटीशन चैलेंजिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अथॉरिटी टू चेंज ट्रिब्यूनल। इन्होंने कहा जी कि अंडर इलेक्शन एक्ट ईसीपी हैज द पावर टू चेंज ट्रिब्यूनल बट इट्स नेसेसरी टू प्रोवाइड रीजंस फॉर सच अ चेंज। पिटीशन टू ट्रांसफर पोल ट्रिब्यूनल फ्रॉम सक्सेसफुल मेंबर्स टू एनए ऑफ पीएमएलएन विल रिमेन पेंडिंग। ईसीपी ने कहा जी कि हम ये अपना डिसीजन जो है ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है वो कंसिडर करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एक्सेप्ट किए थे ये पिटीशन फाइल बाय शोएब शाहीन आमिर मुगल अली बुखारी ऑन अलेज्ड पोल रिगिंग। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपना डिटेल्ड डिसीजन देते हुए कहा कि कमीशन जो है उसने हेस्टीली एक्ट किया था और जो ये रिक्वेस्ट की गई है कि ट्रिब्यूनल को चेंज किया जाए ये बगैर स्वर्न एफिडेविट जो है उनको देखे हुए ऑन द बेसिस ऑफ बायस किया था। उन्होंने कोई पिटीशनर्स को फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि वो अपने केस को सही तरह से प्रेजेंट कर सकें, विच इज अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने कहा जी कि ये जो हियरिंग ऑल पार्टीज की होती है उसमें सब किसी को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और चूंकि किसी को सुनना नहीं, सारों को आप लोगों ने नहीं सुना, तो इसलिए हमारी नजर में इस आपके फैसले की कुछ वैल्यू नहीं है, और इसीलिए हम इस फैसले को पेंडिंग कंसिडर करेंगे. इसके साथ साथ जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस मुनीब अख्तर को विद जस्टिस अमीनुद्दीन खान इन जजेस कमेटी, और अंडर एक्सरसाइजिंग हिज पावर्स अंडर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 जिसको कि अप्रूव किया था प्रेसिडेंट जरदारी ने, जिसमें कि वो चेंजेस कर सकते थे. तीन मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी थी जिसको कि कहा गया था कि आपने सुप्रीम कोर्ट बेंचेस को फॉर्म करना है और ह्यूमन राइट्स के केसेस देखने हैं. ये जो न्यूली अमेंडेड लॉज हैं ये एडिशनल पावर्स देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को टू नॉमिनेट जज एज मेंबर ऑफ द कमेटी इफ इट इज एब्सेंट फ्रॉम देयर. और फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो है नया ऑर्डिनेंस ये सीजेपी को ये भी अथॉरिटी देता है कि वो केसेस भी असाइन कर सकते हैं. पीडीएम जो थी उसने अपने लास्ट डेज में ये लॉ को पास किया था टू रेगुलेट सीजेपीज पावर्स, और लेकिन ये बड़ा इनको सेटबैक मिला था जिस वक्त 8 मेंबर बेंच ने जो उस वक्त हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदयाल, उन्होंने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर्स दिए थे ऑन April 13, 2023. तो बहरहाल जी जस्टिस में ये काफी खिचड़ियां जो हैं ये चल रही हैं. आज मुझे लग रहा है कि आज ज्यादा जो है ये लॉ से रिलेटेड हमारी स्टोरी है. इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा जो हैं उन्होंने कहा जी कि एक दफा जिस वक्त बक्से खुल जाते हैं तो फिर फॉर्म 45-47 जो है उसका कोई ना स्टेटस ना कोई मकसद रह जाता है. तीन मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट बेंच था हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसमें उन्होंने डिसमिस की है पीपीपी के जो कैंडिडेट हैं गुलाम रसूल, उनकी ये पिटीशन जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि ये बलोच असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन PB 14 नसीराबाद जो है उसके अंदर रीकाउंट करवाया जाए. उन्होंने कहा जी आपने कोई हमको जो आप एलिगेशंस लगा रहे हैं उसका आपने कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिया है. एज अ रिजल्ट पीएमएलएन के कैंडिडेट मोहम्मद खान लहरी जो हैं वो उस सीट से जो जीते हैं वो ही जीते माने जाएंगे. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये होती है कि ये वोट्स कितने आए हैं और ये जो फॉर्म 45 है इनको फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भरते हैं. जो रसूल साहब के लॉयर थे उन्होंने कहा जी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उन्होंने फ्रॉड किया है और झूठे रिजल्ट्स दिए हैं, और 7 पोलिंग स्टेशन की जो में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसके अंदर चीफ जस्टिस ने कहा आपको कैसे पता है कि उन्होंने झूठे रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर किए हैं. तो लॉयर ने कहा कि मुझे हमें पता है कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे ये इनके खिलाफ पीपीपी के जो मेरा क्लाइंट था उसके खिलाफ काफी ये बायस थे और उन्होंने प्रॉपरली नहीं फॉर्म 45 प्रिपेयर किया. जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि आप तो जो हैं सारे के सारे कॉपीज दिखा रहे हैं जबकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड दिखा रहे हैं. आपके ने जो विटनेसेस भी पेश किए हैं वो भी झूठे और गलत नाम ले रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का. उनको तो पता ही नहीं है कि वो किस किस पोलिंग स्टेशन में कौन कौन सा पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके बाद कहा जी कि ये जो आपका जो ये बात है कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर बायस थे और आपने वो तो कह दिया लेकिन आपने रीकाउंट के ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन जो है वो शो नहीं किया. जस्टिस शाहिद इकबाल जो है उन्होंने कहा जी कि आपके पास अपना जो एलिगेशन है उसको प्रूव करने का कुछ नहीं है क्योंकि आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स और चीजें दी हैं वो सब के सब गलत हैं. इसके ऊपर लॉयर ने कहा जी तो इसका मतलब है कि आप मेरे क्लाइंट को झूठा मान रहे हो. चीफ जस्टिस ने कहा कि ये झूठे और सच की बात नहीं है, ये दिस इज ऑल द बेसिस ऑफ फैक्ट्स. ये कोई हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई नहीं है जिसमें एक सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है. और इसलिए उन्होंने कहा कि आपको ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर आपने एलिगेशन लगाया कि वो बायस थे उनको आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो आप प्रूव नहीं कर पाए हैं. आईएसपीआर की आज एक प्रेस रिलीज आई है उसके मुताबिक 6 जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हुई है और 12 जो टेररिस्ट हैं 2 डिफरेंट ऑपरेशंस जो नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में हो रहे थे उसमें उनकी डेथ्स हुई हैं. और इसके अंदर आईएसपीआर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो थे उन्होंने कुछ 7 टेररिस्टों की मूवमेंट देखी थी जो है वो यहां पे नॉर्थ वजीरिस्तान में स्पिन वाम के इलाके के अंदर नियर पाक अफगान बॉर्डर ये वो स्नीक करके अंदर आने की कोशिश कर रहे थे. पाकिस्तान मिलिट्री ने उनको रोका और उनको खत्म किया और काफी हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर रहा. दूसरा जो वाकया था वो हुआ साउथ वजीरिस्तान में लद्दा के एरिया में और वहां पे भी जब हैवी एक्सचेंज हुआ सिक्योरिटी फोर्सेज और टेररिस्टों के बीच में तो 6 जो सोल्जर्स थे उनको शहादत मिली और 12 जो टेररिस्ट थे वो मारे गए. ऑपरेशन जो अब सैनिटेशन का है वो इस इलाके के अंदर अभी भी जारी है. हिंदुस्तान में भी जनाब चीजें भड़की हुई हैं, आपको मालूम ही है, और वो ये है कि एनआईए ने आज तो सबसे पहले रेड्स की हैं चार लोकेशंस पे इंडियन पंजाब के अंदर, अंडर देयर ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ टेरर कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्विंग गुरपतवंत सिंह पन्नू और इनकी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है सिक्स फॉर जस्टिस इन इंडिया। एनआईए की टीम ने जो आज टारगेट किए प्रेमिसेस, वो एक मोगा में थे, दो भटिंडा में थे, एक मोहाली में था। उन्होंने कहा इसमें हम लोग बहुत सारा इनडिस्क्रिमिनेटिव मटेरियल भी मिला है जिसके अंदर डिजिटल डिवाइसेज हैं जो कि अब हम एग्जामिन कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी यहां पे अनरेस्ट करने की ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं पन्नू साहब, और इनकी जो सिक फॉर जस्टिस है और उसके मेंबर्स जो हैं वायलेंस और टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं और वायलेंस इंसाइट कर रहे हैं। एनआईए ने रजिस्टर इनके खिलाफ सबके खिलाफ लिखा था ऑन नवंबर 17, 2023, क्योंकि उससे पहले जो पन्नू हैं उन्होंने थ्रेट्स दिए थे एक वीडियो के अंदर ऑन सोशल मीडिया ऑन नवंबर 4, 2023, जिसमें कि उन्होंने वार्न किया था सिखों को कि एयर इंडिया के प्लेन से फ्लाई मत करना क्योंकि 19 नवंबर ऑनवर्ड से आपका फ्लाइट जो है वो सेफ नहीं रहेगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि एयर इंडिया के जो ग्लोबल ऑपरेशंस हैं वो भी हम डिसरप्ट करेंगे। तो ये है जनाब, और फर्स्ट फेज के इलेक्शंस हो गए हैं जी इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और आज जो है कुछ जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया लीडर्स के बीच में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वीपी उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने कहा जी कि हमारी पार्टी ने जम्मू और कश्मीर में बीजेपी को घुसने नहीं दिया था, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के विच वॉज पार्ट ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इन द 2000s, ये पीडीपी जो है उसने, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और उनकी जो चीफ है महमूदा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने जो है वो ये सब कुछ किया था। वो इस बात का जवाब दे रहे थे क्योंकि पीडीपी की चीफ जो है महमूदा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने कहा कि मोदी जी को थैंकफुल होना पड़ेगा अब्दुल्ला फैमिली का क्योंकि बिकॉज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके जो फाउंडर हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसकी वजह से जम्मू और कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने थे। जब ये बात सुनी इन्होंने तो उमर अब्दुल्ला ने कहा जी कि जो है हम तो जो है यहां पे नहीं घुसने दे रहे थे बीजेपी को, आपने दोस्तियां बनाई और आपने ये किया। इसके ऊपर महमूदा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जब मिनिस्टर थे इन बीजेपी गवर्नमेंट तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो ये कानून जो है बड़े जो है वो कंटेंशियस किस्म के, जैसे कि पोटा का कानून है वो लेकर आए, बैन किया इन्होंने शातूस को, और बीजेपी ने तो बल्कि उमर साहब को सारी दुनिया फिराने के लिए ले गए थे और उनको बताया था कि जम्मू और कश्मीर का मसला जो है पॉलिटिकल नहीं है, टेररिज्म रिलेटेड है, तो ये सारे का सारा टेररिज्म जो है पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसकी वजह से यहां पे अनरेस्ट है, तो इसलिए इनको बीजेपी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इनके जो भी एजेंडा थे उन्होंने उसको फुलफिल किया है। तो जाहिर है उमर अब्दुल्ला इस पे भेड़ेंगे। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं और बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब, उन्होंने भी आज बहुत ज्यादा जो है वो कांग्रेस को लताड़ा, एक 3 पेज का लेटर लिखा है उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिक अर्जुन खड़गे साहब को, जो तो उस पे उन्होंने इनको जो है वो काफी खींचा है क्योंकि एक लेटर मल्लिक अर्जुन खड़गे ने भी मोदी जी को भेजा था और उसके अंदर जो उनकी बीजेपी की पार्टी के बहुत ऑब्जेक्शनेबल और वायलेंट स्टेटमेंट्स थे राहुल गांधी जी के बारे में, उसके बारे में इन्होंने बात की थी। तो इन्होंने आज नड्डा साहब ने कहा कि तुम शायद भूल गए हो या डिलिबरेटली भूलने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो इंतहाई भद्दी शब्दावली यूज करते हैं मोदी जी के लिए और पिछले कई सालों में इतने गंदे लफ्ज जो है किसी हेड ऑफ द स्टेट के लिए नहीं यूज किए गए। उन्होंने कहा जी पिछले 10 साल में कांग्रेस के लीडर्स ने 110 टाइम्स मोदी जी को एक्यूज किया है और आपके तो राहुल गांधी जी जो हैं वो तो बैकवर्ड जो क्लासेस हैं और मोदी जी जो हैं उनको थीफ बोलते हैं, यानी चोर बोलते हैं, तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? अब जो है राहुल गांधी के लिए हो रहा है तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, तो आप कौन सा एजेंडा जो है पूरा कर रहे हो? जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है उसकी हिस्ट्री में कभी भी किसी ने जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है उसके लिए कितनी खराब जबान नहीं इस्तेमाल की जो कि कांग्रेस जो है मोदी जी के लिए करती है, तो शायद आपको जो है हिस्ट्री थोड़ा भूल गई है, आपको हिस्ट्री थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है भाईजान। हाय हो चीजें बढ़िया गर्म ने। अच्छा जी, शिवसेना यूबीटी के जो स्पोक्स पर्सन है संजय रावत, उन्होंने कहा जी कि राहुल गांधी जी के खिलाफ एक पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो बनाई जा रही है और उसको थ्रेटन किया जा रहा है कि तुम जान से जाओगे। जो बीजेपी शिवसेना के लॉ मेकर्स हैं जो खास तौर पे ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कहता है जबान काटो, कोई कहता है जबान जलाओ, कोई कहता है ये टेररिस्ट है, उसके ऊपर इन्होंने आज बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्डेमनेशन शो की। आज रिपोर्टर्स के साथ दिल्ली में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि चाहे कोई भी इलाका हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, महाराष्ट्र हो, ये जो लैंग्वेज यूज की जा रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो हाल हमने तुम्हारी दादी इंदिरा और जो तुम्हारे बाप राजीव का किया था वही हाल हम तुम्हारा भी करेंगे। तो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों इसके ऊपर खामोश बैठे हुए हैं, क्यों इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके पार्टी के मेंबर्स राहुल गांधी को लाइव थ्रेट्स दे रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके लिए ऐसी जबान ठीक जो है वो नहीं है इस्तेमाल करना। उन्होंने अलर्ज किया जी कि ये सारे का सारा जो है ये उनकी सेफ्टी को करेगा, जेपरडाइज करेगा और ये पीस खराब करेगा, जबकि जम्मू और कश्मीर और हरियाणा के अंदर अभी जो है इलेक्शंस भी चल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी कहा इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन शो करते हुए कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इस मुल्क के लिए बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं और उनकी फैमिली के मेंबर्स को इस तरह के थ्रेट्स देना बिल्कुल ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स हिन्दुस्तान में इतनी गिर जाएगी हमने कभी नहीं सोचा था। है भाई आमिर साहब, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये गंध हर जगह फैला हुआ है। और जनाब यश चोपड़ा साहब की जो बड़ी आइकॉनिक और ब्लॉकबस्टर रोमांटिक मूवी 2004 में आई थी वीर जारा, उसको फिर से री रिलीज किया गया है जो है 20 साल के बाद। और इस फिल्म में आपको पता ही है कि शाहरुख खान और प्रीति जेंटा थे लीड रोल में, और आप सोचें कि री रिलीज के ऊपर भी बॉक्स ऑफिस पे इसने 100 करोड़ जो हैं वो कमा लिए हैं। और इसके अंदर और भी बड़े दिग्गज किस्म के सितारे थे, जैसे कि रानी मुखर्जी, बिग बी, हेमा मालिनी, मनोज बाजपेयी, बमन ईरानी, किरण खेर, अनुपम खेर और दिव्या दत्ता। तो जनाब ये फिल्म फिर से बड़ा अच्छे चल रही है। और जनाब आज थी महेश भट्ट साहब की बर्थडे और उनके फ्रेंड्स और फैमिली ने उनको मुबारकबाद दी एज ही टर्न 76। उनकी बेटी आलिया ने बड़ा ही प्यारा उनको एक नोट लिखा और उन्होंने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप मेरे फादर हो। इंस्टाग्राम पे उसने कुछ तस्वीरें दो डाली और उन्होंने कहा कि मेरा आपके साथ बड़ा प्यार है और बॉन्ड है, और उन्होंने कहा कि जो है आप मेरी जिंदगी में हो, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप। कभी कभी जिंदगी में सिर्फ ये चाहिए होता है कि somebody comes and shows up, और आपने हमेशा ये किया, आप हमेशा हमारे साथ हो, तो इसलिए हैप्पी बर्थडे पॉप्स ग्रैंडपा और देयर इज नो वन लाइक यू। इसके साथ साथ इनकी वाइफ जो है सोनी राजदान और इनकी दूसरी बेटियां जो हैं पूजा भट्ट और शाहीन, उन्होंने भी इनको मुबारक बातें दी और फिटरनिटी ने भी दी। और जनाब विवेक ओबरॉय ने आज बड़ी ही अजीब बातें की। उन्होंने कहा कि मैं अपने जो रिलेशनशिप्स थे उनको बहुत सीरियस नहीं लेता था। हैं, तो फिर ऐसे ही तुमने सल्लू भाई के साथ मारामारी की ऐश्वर्या राय के ऊपर? हैं, अगर तुम सीरियस नहीं थे गंदे बच्चे, तुमने अपना भी करियर खराब किया और सल्लू के साथ लड़ाइयां भी की, गंदे। अच्छा जी, वो कहते हैं जी कि मैं अपनी कोई गर्लफ्रेंड को सीरियस नहीं लेता था और मैंने उनको पहले ही बड़ा क्लियरली बता दिया था बचपन से ही, यानी बचपन से नहीं, कॉलेज के जमाने से ही। मैं साथ साथ पढ़ रहा था और मैं साथ बिजनेस भी कर रहा था और मेरे पास किसी और चीज का टाइम नहीं था, तो इसलिए मेरे लिए कैजुअल रिलेशनशिप्स वर्क करते थे और मैं बहुत क्लियरली सबको बता देता था। उसकी शायद वजह यह है कि मेरी जो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थी वो कैंसर से मर गई थी और फिर मैं रिलेशनशिप्स में फिर से नहीं जाना चाहता था कि मेरा दिल बार बार ना टूटे। लेकिन जब मैंने प्यार किया तो बिल्कुल दिल से किया, ऑनेस्टी के साथ किया, कभी चीट नहीं किया और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ट्रूथफुल रहा। गुड, वेरी गुड। और जी पाकिस्तान के अंदर साउथ अफ्रीकन विमेन जो आई हुई है क्रिकेट टीम, उसने पाकिस्तान को तीसरा T20 हराया और 2-1 से ये 3-मैच सीरीज जीती एट मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। और बड़ा सक्सेसफुली जो थर्ड मैच था उसको जीता, पहले इन्होंने पहला जीता था, दूसरा जो था पाकिस्तान ने जीता और आज इन्होंने तीसरा जीता। तीसरे मैच के अंदर आज देवर चेजिंग 154 रन्स, जो कि इन्होंने टारगेट पूरा किया 18.3 ओवर्स में फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इनकी जो ओपनर थी लॉरा वुडस्टार्ट, उसने 45 रन्स बनाए। एनरी ड्रेक्सन जो थी उसने 44 नॉट आउट बनाया। एनिक बॉश ने 46 बनाए बट शी रिटायर्ड हर्ट। पाकिस्तान की तरफ से सादिया इकबाल और तूबा हसन ने एक एक विकेट लिया। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था और चूज किया था बॉलिंग करने का और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान को फॉर 153/5। और जनाब एब्सोल्यूट एवर लास्ट न्यूज इज अबाउट आईसीसी डेलीगेशन, जिसका हमने आपको बताया था कि वो आए हुए हैं जरा यहां पे इंस्पेक्शन करने के लिए। उन्होंने भी पाकिस्तान की बड़ी चेहे पी जी। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकातें हुई और उन्होंने डिस्कस किया अरेंजमेंट्स के लिए फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। उन्होंने सेटिस्फेक्शन शो की ऑन अरेंजमेंट्स इन कराची, रावलपिंडी, एंड इस्लामाबाद और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हैं उन्होंने डिटेल डिस्कशन की ऑन अदर मैटर्स एज वेल। आईसीसी के सीनियर मैनेजर इवेंट सारा एडगर, इवेंट मैनेजर एंड चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट लीड ऑन मोहम्मद जैदी, जनरल मैनेजर क्रिकेट आईसीसी वसीम खान, सिक्योरिटी मैनेजर डेविड मस्कर, ब्रॉडकास्ट कंसल्टेंट मंसूर मंज और पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला, डायरेक्टर सिक्योरिटी कर्नल रिटायर्ड खालिद महमूद, हेड ऑफ मार्केटिंग सलमान मसूद और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के बीच में मुलाकातें रहीं। नकवी साहब ने एश्योर किया कि हमने वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट्स किए हैं और हम स्टेडियम्स को अपग्रेड कर रहे हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है हर पार्टिसिपेटिंग टीम को दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए बड़ा ऑनर है कि हम इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं। हमारी जो प्रेपरेशंस हैं और ये जो भी कोई अपग्रेडेशन हमारे स्टेडियम्स में चल रही हैं ये बिल्कुल वक्त से पहले खत्म हो जाएंगी और बड़ा ग्लैमरस और ग्रैंड किस्म का यहां पे ओपनिंग जो है वो होगा। और उन्होंने कहा जी कि जो टीम यहां पे आएगी बड़ा पीसफुल और सिक्योर एनवायरमेंट को एन्जॉय का मजा लेगी। तो जनाब ये थी आज की खबरें।
अब ये थी आज की गर्मा गर्म और खट्टी मीठी खबरें।
यस यस।
तो आई होप तमाम सामयीन का नाम
मीठी से खट्टी थी,
आज खट्टी ज्यादा थी,
आज गर्म ज्यादा थी,
आज गर्म खबरें ज्यादा थी। तो आई होप के तमाम जो हमारे लिसनर्स हैं और जो हमें देख भी रहे हैं उन सब का टेम्परेचर सेट हो गया होगा।
सेट हो गया क्योंकि आपने उससे पहले ही खबरों से पहले ही गर्मा गर्मी बहुत कर दी थी तो उस वक्त लोगों का ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया था। जब खबरें शुरू हुई तो नीचे आ गया बल्कि
मैंने ऊपर पहुंचा दिया था।
हाँ ना, इतनी प्यारी खबरें सुनाई है। वो कह रहे हैं कि मेरा तो रिलेशनशिप सीरियस ही नहीं था तो फिर तूने क्यों लड़ाई ली सल्लू के साथ भाई। तूने फिर लड़ाई क्यों ली सल्लू के साथ? फिर
एंड में यही होता है ना, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बस एंड में यही होगा कि भाई मैं तो
इसीलिए ऐसी दिल ही नहीं लाया किसी नाल है। कह रहे हैं मैं इसी वास्ते दिल ही नहीं लाया,
जरूरत ही नहीं,
मैं सीरियस ही नहीं होया,
सीरियस ही नहीं सोचो।
हाँ बस सोचो जरा है? और सल्लू जैसे बंदे से लड़ाई ले ली, पानी में रहने तो मगरमच्छ से लड़ाई।
हाँ
वो ये क्या है,
आप तो ये बर्दाश्त करो।
हाँ व्हाट इज दिस,
दिस इज पॉलिटिक्स। ठीक हो गया,
ठीक है।
चले जनाब ऐसा करते टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक ले लेते और जब तक आप भी ठंडा पानी पी लें अपने टेम्परेचर को डाउन